ये सुंदर मंदिर इसको कुशल विहारी मंदिर कहते हैं। एक बहुत ही अच्छे भक्त राजस्थान के एक राजा, जब श्रीमती राधा रानी की विग्रह जो हमने दर्शन किए सवेरे के समय, जब विग्रहों की वहां पर स्थापना हुई, तो एक राजा सोच रहे थे कि मैं राधा रानी के लिए एक बहुत सुंदर महल बनाऊंगा। मैंने बड़े मेहनत के साथ ये महल बनाया। अब देखिए यहाँ की जो आर्टवर्क है, जो स्टोन का, जो स्कल्पचर का कार्य है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मेहनत से बना है। ये मंदिर निर्माण करने के बाद में जब उनकी योजना थी कि राधा रानी के विग्रह को उस पर्वत से यहाँ पर लेकर आएंगे, जो हम वहां पर थे वो भानगढ़ है और यहाँ पर हमें ये दानगढ़ है। तो अगले दिन वो विग्रह को यहाँ पर लेकर आने वाले थे और रात के समय श्रीमती राधा रानी स्वप्न में आए और बोले राजा कि वो जो स्थान है वो मेरा घर है, मेरे को अपने घर से दूर मत ले जाओ, मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। तो इसलिए फिर विग्रह वहीं पर रहे और उसकी जगह यहाँ पर कुशल विहारी, राधा कुशल विहारी मंदिर का डीटीस की स्थापना की गई। मैंने आज सवेरे के प्रवचन में आप लोगों को बताया था कि बरसाना जो ग्राम है, ये चार पर्वत प्रमुख है यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्मा जी के चार सिर हैं। हम यहाँ पर पहले थे उसको भानगढ़ कहते हैं और अब हम यहाँ पर आए हैं, ये दानगढ़ है। रात के समय हम लोग जहाँ पर जाएंगे उसका नाम मानगढ़ है और दानगढ़ से मानगढ़ के बीच में विलासगढ़ है। दानगढ़, भानगढ़, मानगढ़ और विलासगढ़ से चार गढ़ है। तो मैं थोड़ा सा दानगढ़ के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो लीलाएं हुई, जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने बताई है, जो कि लोकल ब्रजवासियों से सुनी है, एक्चुअली यहां से पास में और एक स्थान है जहां पर हम लोग प्रसाद के बाद जाएंगे, इसका नाम है सांकरी खोर। सांकरी खोर जो है दो पर्वतों का मिलन है। दो पर्वत हैं, जैसे मराठी में इसको दरी बोलते हैं, वैली नीचे का भाग। तो एक पर्वत है दानगढ़ और दूसरा पर्वत है विलासगढ़। ये दोनों पर्वतों का यहां पर मिलन होता है, उसके बीच में एक छोटा सा रास्ता है, बड़ा नैरो पैसेज, बहुत छोटा रास्ता, जिसको सांकरी खोर बोलते हैं। तो ये सांकरी खोर में ये लीलाएं होती थी कि भगवान कृष्ण और उनके सखा वो गोपियों को रोकते थे, इसीलिए उस पर्वत को विलासगढ़ कहा गया है। विलास का मतलब होता है लीला, यहां पर राधा और कृष्ण की लीलाएं होते हैं, उस स्थान को विलासगढ़ कहा गया है। और मानगढ़, मान का एक अर्थ है क्रोध, यहां पर श्रीमती राधा रानी क्रोधित हो जाते हैं भगवान कृष्ण से, उसको मानगढ़ कहा गया है। तो यहां पर, जहां पर दो पर्वतों का मिलन होता है सांकरी खोर, यहां पर दान के लिए लीला हुआ करती थी। इसका वर्णन छह गोस्वामी के पुस्तकों में, विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी के पुस्तक में वर्णित है, ललित माधव और दान के लिए कौमोदुखी और दान के लिए चिंतामणि, इन पुस्तकों में इसका वर्णन है। तो जब श्रीमती राधा रानी और गोपियों को ये समाचार मिला कि कृष्ण इस इलाके में हैं, तो वे सब सोचने लगे कि कैसे ये दान के लिए लीला को किया जाए। अपने माता पिता को श्रीमती राधा रानी बताने लगे कि यहाँ पर पास में एक यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ के लिए घी की आवश्यकता है, तो हम घी और मक्खन और दूध दही ये सब चीजों को ले जाना चाहते हैं ब्राह्मणों के लिए। तो जब वे उस एक पर्वत से दूसरे पर्वत की ओर जाने का प्रयास करते, बीच में जो रास्ता है इसको सांकरी खोर बोलते हैं, जो आप शाम के समय देखोगे, वहां पर कृष्ण और उनके अनेक सखा एकत्रित हो जाते हैं, हाथ में लकड़ी लेकर टैक्स कलेक्टर के रूप में। यहां दान शब्द का अर्थ वास्तव में दान नहीं है, दान का अर्थ यहां पर टैक्स है, कर। कृष्ण उनके सखा सब बोलते कि हम यहां पर राजा के प्रतिनिधि हैं, यहां पर से जो भी व्यक्ति गुजरता है उसको यहां पर टैक्स भरना होता है। आपको टैक्स भरना होगा जो भी दूध और दही आप लेकर जा रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी और गोपियां बोलते कि सॉरी, हम नहीं भरेंगे टैक्स। श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वरी हैं, वृंदावन वृंदावन जो है श्रीमती राधा रानी की संपत्ति है, इसीलिए हमको टैक्स नहीं भरेंगे, बल्कि आप अपनी गायों को वृंदावन में चराने ले जाते हो इसलिए आपको टैक्स भरना चाहिए। इस तरह राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान में बहुत प्रेम के वाद विवाद होते और अल्टीमेटली जो कृष्ण उनके सखा होते और श्रीमती राधा रानी और गोपियों के सिर के ऊपर मटकी को जमीन पर फेंक देते। और आप शाम के समय एक स्थान देखोगे, दोहिनी कुंड। दोहिनी कुंड वो स्थान है जहां पर सब जो दूध गाय के द्वारा निकाला हुआ दूध और जो मटके फोड़े हुए मक्खन और दही है वो सब एकत्रित होता है, उसको दोहिनी कुंड बोलते हैं। और कृष्ण और उनके सखा जो है छोटे छोटे पेड़ की पत्तियां लेकर द्रोण बनाते और उन द्रोणों में बड़े प्रसन्नता के साथ उस प्रसाद को स्वीकार करते। वहां के जो कदम्ब के वृक्ष हैं उनकी पत्तियां बिल्कुल उसी आकार के हैं जैसे कि ये कोई द्रोण होता है, और भगवान कृष्ण के सखा उसमें बड़ा आनंद लेते हैं। तो इस तरह की लीला सांकरी खोर में होती, आप देखोगे शाम के समय, अगर अगर हमारे पास समय हुआ तो हम लोग वहां जाएंगे। काफी छोटी सी गली है, एक समय एक ही व्यक्ति वहां से गुजर सकता है। और दो दो पर्वत हैं, एक श्याम वर्ण का है और एक गोरे वर्ण का है, जो श्रीमती राधा रानी का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा भगवान श्याम सुंदर गोपीनाथ का प्रतिनिधित्व करता है। एक दिन गोपियां सोचने लगे कि हम कृष्ण को कुछ सिखाना चाहते हैं, हर बार कृष्ण आते हैं और सब कुछ हमारे साथ हमारे से छीन लेते हैं, हम उनको सबक सिखाना चाहते हैं। तो एक दिन कृष्ण के आने से पहले ही गोपियां बहुत सारे बड़ी संख्याओं में, करीब 100, 200, 300 गोपियां सब छिपके बैठे थे सांकरी खोर के पास में, पर्वत के पीछे। और कृष्ण अपने सखाओं के साथ आ रहे थे, 20-30 सखा थे, बिल्कुल मासूम अनअवेयर, कुछ पता नहीं। और गोपियां कृष्ण को और सब सखाओं को पकड़ लेते हैं और पकड़ के उनकी शिखा को चोटियों को पर्वत से बांध देते हैं और उनको सिखाते हैं कि अब तुम क्या करोगे, अगर तुम छूटना चाहते हो तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो जो टैक्स जो पहले कृष्ण गोपियों से लेते वो गोपियां जो है कृष्ण से लेते। 2 तारीख को अर्थात परसों गिरिराज गोवर्धन पूजा का दिन है, जिस दिन नंद महाराज ने अपने सखाओं के साथ गोवर्धन पूजा की थी, और उसी दिन अगर राधा रानी की कृपा हुई तो हम भी गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। और गोवर्धन पूजा के दिन आप देखोगे एक कुंड है, इसका नाम है दान निवर्तन कुंड। यहाँ पर टैक्स रिवर्स हो गए, पहले कृष्ण गोपियों से ले रहे थे लेकिन इस स्थान पर गोपियां जो हैं वो कृष्ण से ले रहे थे। तो भगवान कृष्ण अंत में जब देखा कि सब चोटी बांधी है, गोपियों ने हाथ में लकड़ी लिए हुए हैं, कोई बचने का उपाय नहीं है, तो कृष्ण समर्पित हो गए, सर्वधर्मान परित्यज। जनरली कृष्ण बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, लेकिन यहां पर कृष्ण राधा रानी की शरण में आ जाते हैं। यस, आई बाउ डाउन एट राधा रानी फीट। और श्रीमती राधा रानी से पूछने लगे कि अभी मैं क्या टैक्स भरूं आपके लिए। तो श्री राधिका सोचने लगे कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है कि आपसे टैक्स इस रूप में लेना, क्योंकि मैं एक स्त्री हूं, एक माता हूं, और आपको रोकना इस तरह से ठीक नहीं है। अगर सही में मुझे टैक्स लेना है तो हमें अपने रूप को बदलना होगा। तो कृष्ण राधा रानी बन गए और राधा रानी कृष्ण बन गए, और फिर ये लीला फिर से की। और इस समय जो कृष्ण थे वो राधा रानी थे, और सारे गोप गोपियां बन गए और सारे गोपियां गोप बन गए। ये कैसे हुआ, ये अचिंत्य है। भगवान कृष्ण अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते। श्रीमती राधा रानी जो अभी कृष्ण थे वो कृष्ण के रूप में थे, हाथ में लकड़ी लेकर कृष्ण जो कि राधा रानी के रूप में थे उनको रोक दिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हरे कृष्णा में दोनों आ जाते, राधा और कृष्ण। तो राधा रानी कृष्ण थे, कृष्ण राधा रानी थे, और राधा रानी जो कृष्ण के रूप में थे वो कृष्ण जो राधा रानी के रूप में थे उनको रोक रहे थे। और वो कहने लगे आपको सब दही दूध सब देना होगा, और जहां पर ये लीला हुई वो स्थान यहाँ पास में ही है, और यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है राधा दान बिहारी। कृष्ण का एक नाम है दानवीर, यहाँ पे राधा दान बिहारी मंदिर है। और ब्रजवासी पुजारी बोलते हैं कि यहाँ पर जो राधा रानी की मूर्ति है वो कृष्ण है, और जो कृष्ण की मूर्ति है वो राधा रानी है। शायद अभी दर्शन बंद होगा, लेकिन अगर खुला होगा तो हम लोग दर्शन कर सकते हैं। और उधर उसके सामने आप देखेंगे, जैसे हम यहाँ मंदिर से बाहर निकलेंगे, एक बहुत सुंदर झूला है जहाँ पर राधा और कृष्ण के झूलन लीला हमेशा हुआ करते थे। और यहाँ पर ब्रजवासी एक और सुंदर कथा बताते हैं कि एक बार श्रीमती राधा रानी और गोप और गोपियाँ कृष्ण के साथ वहाँ थे, और एक ब्राह्मण उनके पास आया, और ब्राह्मण बहुत चिंता में था, बहुत बहुत व्यथित था। और कृष्ण ने पूछा क्या कारण है, बोले कि कोई समस्या है कि मेरी पुत्री का विवाह कराना है, कन्यादान, और मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं है। और यहाँ पर एक ब्रजवासी हैं जो महाराज के मित्र हैं, बताते हैं, एक्चुअली बताते थे, अभी तो कुछ साल पहले उन्होंने देह त्याग कर दिया, असीम कृष्ण प्रभु, वो बताते कि यहाँ पर ब्रज में ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है, सब जगह भी होती है लेकिन ब्रज में भी, कि अपनी पुत्री का विवाह कराना, उसके लिए बहुत धन एकत्रित करना पड़ता है ब्रजवासियों को भी। ये ब्रजवासी जो है भगवान कृष्ण के पास आए और कहने लगे, गोपाल कृष्ण आपके पास हजारों हजारों गाय हैं, तो आप हमें कुछ दान में दो जिससे मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए, कन्यादान के लिए उस धन को उपयोग कर सकूं, और दहेज के साथ बड़े खुशी के साथ अपनी पुत्री को विदा कर सकूं। तो कृष्ण कहने लगे कि क्या बात, क्या है इतनी जल्दी क्या है। बोले जल्दी इसलिए है क्योंकि एक ही समस्या है, एक ही व्यक्ति मुझे बहुत समस्या दे रहे हैं। तो कृष्ण ने पूछा कौन है, बोले मेरी पत्नी, क्योंकि अगर मैं जब तक दहेज का इंतजाम नहीं करूंगा तो मेरे पत्नी ने मुझे बोला कि आप वापस घर नहीं आ सकते, इसलिए आप, राधानाथ महाराज बोलते हैं कि व्हाट हैपेंस बिटवीन हस्बैंड्स एंड वाइफ इज अ लॉन्ग स्टोरी, कि पति और पत्नी के बीच में सब चलता रहता है। तो सब गोप भी थे, गोपियां सब हंसने लगे, और कृष्ण बोले सही में मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आप मांग रहे हो, मैं आपको सबसे मूल्यवान चीज देता हूं, और वो है श्रीमती राधा रानी, आज से राधा रानी भी आपकी हो गई। वो मंत्र बोलते हैं, दान देने के लिए मंत्र होते हैं, कृष्ण राधा रानी को दान में देते हैं, और ब्राह्मण सिर को हाथ में रखकर बोलते हैं, पहले तो एक की चिंता थी अभी दो की, वो रोने लग गए, श्रीमती राधा रानी भी रोने लगी कि मेरे को अभी कहीं और जाना होगा और ब्राह्मण के साथ रहना होगा। अंत में श्रीमती राधा रानी बोले कि हमें कुछ उसको मदद करना चाहिए, ये दुखी है, क्योंकि जब कृष्ण के पास कोई जाता है तो कृष्ण सीधे कृपा नहीं दिखाते, राधा रानी के पास जाते, राधा रानी के पास गए, राधा रानी ने कृष्ण से कहा, यहाँ पर प्रभुपाद का वाक्य लिखा है, प्रभुपाद एक्सप्लेन्स दैट इफ राधा रानी सेज प्लीज गिव मर्सी टू दिस पर्सन इज बेटर देन मी देन कृष्ण इज ऑब्लाइज्ड टू हेल्प। अगर राधा रानी बोलते हैं कि ये अच्छा भक्त है, मेरे से भी अच्छा है, तो कृष्ण को स्वीकार करना ही पड़ता। तो कृष्ण ने ब्राह्मण को वापस बुलाया और एक तराजू बनाया, तराजू, और एक तरफ राधा रानी को रखा और दूसरी तरफ सारे गोपियां अपने कान के, गले के और पैरों के जो भी सोने चांदी के आभूषण थे सब वहां पर डालने लगे, जब तक कि वजन राधा रानी के वजन के बराबर हो गया, और सारा दान ब्राह्मण को दिया गया, और बड़े खुशी के साथ ब्राह्मण बिना किसी डर के वापस घर पहुंच सके और बड़े खुशी से गाने लगे। और भी कई लीलाएं हैं जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अगर अनंत शेष हजारों फणों से, अगर अनंत काल तक भी राधा और कृष्ण की लीला जो एक क्षण में हुई उसे अगर वर्णन करना चाहें तो वर्णन नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं नित्य लीला। नित्य लीला का अर्थ है कृष्ण की लीला हमेशा चल रही होती है, प्रकट या अप्रकट। 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण धरती पर थे तो ये लीला प्रकट रूप से थी, और आज जब भगवान धरती को बाहर दृश्य चले गए तो भी ये लीला हमेशा चल रही है अप्रकट रूप से। प्रभुपाद जी टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य में समझाते हैं कि भगवान कृष्ण की लीला कोई ना कोई ब्रह्मांड में हमेशा चलती रहती है, अर्थात जब भगवान कृष्ण यहाँ पर जन्म हुए, मथुरा में प्रकट हुए, उसके बाद यहाँ पर जब अगली लीला शुरू हुई पूतना वध, तो किसी और ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म हो रहा है। और थोड़े समय बाद जहां पर पूतना वध हुआ था वहां पर तृणावर्त वध हो रहा है, और जहां पर जन्म हुआ था वहां पर पूतना वध हो रहा है, और जहां पर अभी भगवान नहीं गए थे वहां पर जन्म लीला हो रही। जैसे कोई कोई फिल्म के अलग अलग स्लाइड्स को आप घुमा रहे हो उस तरीके से, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला हमेशा चल रही होती है। जैसे सूर्य है, यहां पर अभी दोपहर के करीब 1 बज रहे हैं, सूर्य अपनी पूरी प्रकाश के साथ प्रकट है, लेकिन किसी और स्थान पर आप जाओगे तो वहां पर सूर्योदय हो रहा होगा, कहीं और जाओगे तो सूर्यास्त हो रहा होगा, और कहीं पर अर्धरात्रि होगी। ऐसे कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण की लीलाएं नित्य रूप से चलती रहती हैं, इसलिए लीलाओं को नित्य लीला कहा जाता है। इस समय श्रीपद राधना स्वयं महाराज बताते हैं कि हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि राधा रानी ने जब बोला, राधा रानी गेव चैरिटी टू द ब्राह्मण, राधा रानी ने ब्राह्मण को दान दिया, तो हमें भी एक दान मांगना है। और क्या दान मांगना है? We want this charity that we can become servant of the servants of her servants. हम श्रीमती राधिका के दासों के दासों के दास बन सके, और किसी एक दिन हमारे अंदर वो योग्यता आ जाए कि हम सच्चे दिल से कृष्ण का नाम पुकार सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर वो भी एक आचार्य के रूप में हमें सिखाते हैं कि क्या कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। जब शुरू करने से पहले अगर आप 2 मिनट निकाल कर प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छा है। कबे हबे बोलो ते दिनामा, अपराध गुचि शुद्ध नमे रुचि, कृपा बल हबे हृदय संचार। कब वो दिन आएगा जब मेरे अपराध दूर हो जाएंगे, मैं कृष्ण नाम में रुचि जागृत होगी। कोरिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण, पुलकित देह गदगद वचन। कब कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा और मैं गदगद हो जाऊंगा, एक्सेसिव, मेरे शरीर के बाल खड़े हो जाएंगे और मेरे आंखों में आंसू आने लगेंगे। अभी हमारी आंखें बंद हो जाती जब के समय, लेकिन वो समय कब आएगा जब कृष्ण और राधा रानी को याद करते हुए मेरे आंखों से आंसू आएंगे। इसकी नकल नहीं कर सकते हम, से कई संस्थाएं हैं जो लोगों को नकली सिखाते हैं रोना, लेकिन हम उस तरह से नहीं करना चाहते। साधना भक्ति के तरीके का पालन करके अगर हम रोज सुबह जल्दी उठकर जप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो बहुत जल्दी हम प्रगति कर सकते हैं। सत्य यह है कि सवेरे का समय जो है वो जप के लिए बहुत अनुकूल होता है, और अगर आप सवेरे उठ के जप करते हैं और सच्चे दिल से पुकारते हुए करते हैं तो बहुत जल्दी हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां पर हमें राधा और कृष्ण के नामों में रुचि जागृत हो। मैं स्वयं भी व्यक्तिगत जीवन में मुझे बहुत, जब मैं कॉलेज लाइफ में था विद्यार्थी के रूप में, तो कई बार जब दोपहर को पूरा होता है रात को, फिर मैंने एक निश्चय किया कि तब तक मेरा जब पूरा नहीं हो तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, ब्रेकफास्ट भी नहीं लूंगा, और तब से मुझे ये आदत हो गई है और तब से जब पे काफ़ी सुधार हो गया। बरसाना धाम में बहुत अच्छा समय है, आप भी अगर ऐसे, अगर आपको चाहिए तो, कंपलसरी नहीं, लेकिन अपने मन में सोच सकते हैं कि मैं 16 माला जप करके ही कुछ खाऊंगा, तो एक दिन थोड़ा लेट होगा और अगले दिन जल्दी नींद खुल जाएगी, क्योंकि मन में होगा। रियली जप ही हमारे सब जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये तो कई लोग बरसाना में आते हैं, ये जो कथाएं मैं बता रहा हूँ कई लोग बताते हैं और उसके बाद मनोरंजन भी होता है, लेकिन रियली महाराज बताते हैं जब तक हम जप ठीक से नहीं कर पाते तो एक कथा सुनना एक मनोरंजन हो जाता है। बहुत अच्छी कथा बताए, अच्छी कथा बताए, लेकिन हमारा उद्देश्य है यात्रा में कि हम सीरियस हो जाएं भक्ति में। श्री प्रभुपाद से एक बार भक्तिचारू स्वामी महाराज ने प्रश्न पूछा था कि आप मुझे कुछ एक चीज बताइए, मुझे कुछ एक चीज बताइए जो मैं जीवन भर याद रखूं, इट इज दैट वन इंस्ट्रक्शन। श्री प्रभुपाद रिप्लाइड, यू हैव गिवन मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम टू सर्व माया, गिव वन लाइफ टाइम टू सर्व कृष्ण। आपने इतने सारे जीवन माया की सेवा की है, एक जीवन कृष्ण के लिए दे दो। कृष्ण मतलब कृष्ण नाम, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण होता है। आप जान सकते हैं आप कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, कैसे कि कितना आप नाम से प्रेम करते हैं, कितना आपका नाम रुचि जागृत है। हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य बताते हैं कि भक्ति के 3 सिद्धांत हैं, वैष्णव की सेवा करना, जीवों पर दया दिखाना और कृष्ण नाम में रुचि जागृत करना। नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया। वैष्णव की सेवा करने से ही हमें नाम रुचि प्राप्त होती है, और जब हमें जब हम साथ साथ दूसरों पर भी दया दिखाते हैं नाम देकर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, हम तो स्वयं क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन गुरु के संदेश को दोहरा कर हमारे अंदर भी नाम के प्रति आकर्षण जागृत होता है। कुछ दिनों पहले, आज से 1.5 साल पहले, मैं कुछ भक्तों के साथ, सुनने सारनाथ स्वामी महाराज, इंद्रद्युम्न महाराज के साथ और भी कई भक्त थे यहाँ, शरद कुमार प्रभु जी, गौरंग प्रभु और कई मंदिर के वरिष्ठ ब्रह्मचारियों के साथ हम लोग बांग्लादेश गए थे। बांग्लादेश में वो स्थान है बेनापोल, जहाँ पर हरिदास ठाकुर जप करते थे, अभी भी वो वृक्ष है, बहुत सुंदर स्थान है जहाँ पर हरिदास ठाकुर जप करते थे। रात के समय वो वेश्या आई थी परीक्षा लेने के लिए, हम लोग भी रात को गए थे सिंधुमापुर, नाइट के टाइम वहाँ गए थे हम लोग। भगवान की इच्छा हो तो आप सब भी वहाँ पर एक बार जाइए, बहुत सुंदर स्थान। तो वहाँ पर का प्रवचन में हिजोली ने राधानाथ महाराज बता रहे थे कि भक्ति का सार इसी में है, एसेंस इम्पॉर्टेंट है, सार। जैसे दूध से दही, दही से मक्खन और फिर घी निर्माण होता है, एक चम्मच घी ले लिया उसकी वैल्यू बहुत है, और अगर आपने दूध लिया जिसमें आधा लीटर दूध और आधा पानी है, इसमें कोई उतनी वैल्यू नहीं है। एसेंस, भक्त को हंस की तरह होना चाहिए, हंस मतलब जो सार लेता है, सार, एसेंस। सब चीजों में सार है भक्ति, और भक्ति में सार है हरि नाम, बस पीरियड, और कुछ नहीं, हरे नाम एव केवलम। तो हमें राधानाथ महाराज बेनापुर के लेक्चर में बोल रहे थे, वी शुड बेग फॉर मर्सी ऑफ द होली नेम, हमें भिक्षा मांगनी चाहिए। द नेक्स्ट स्टॉप, नेक्स्ट स्टेप, वी शुड यर्न फॉर द होली नेम, तरसना चाहिए, जैसे चातक पक्षी तरसता है, तरसता है। देखो, अगर आप अभी तरसना शुरू करोगे तो शायद कई जन्मों बाद वो टेस्ट मिलेगा, और जिसको अभी टेस्ट मिला है वो पिछले जन्मों में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। मुकुंद दत्त तैयार थे 100 जन्म भी इंतजार, 10 लाख जन्म भी इंतजार करने के लिए। वी शुड बेग, वी शुड यर्न, यर्न, तरसना। चातक पक्षी तरसता है, कब बरसात के बूंद होगे, उसको आप बिस्लेरी भी पानी दे तो भी वो नहीं लेगा, उसको वही पानी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज माया दे, इस दुनिया की या स्वर्ग की या मोक्ष, ये सब हमें नहीं चाहिए, ये सब हमारे लिए आकाश पुष्प के समान है। आकाश पुष्प समझते हैं, आकाश के फूल, उनका क्या रंग होता है, आकाश में फूल होते ही नहीं है। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं घोड़ा डिम्ब, न घोड़े के अंडे। संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, घोड़े के अंडे। घोड़े के अंडे कैसे होते हैं, होते ही नहीं है घोड़े के अंडे। तो हमें इस दुनिया के सब चीजों को ऐसे मानना है कि सब घोड़ा डिम्ब है, अच्छे अच्छे धन, अच्छा मकान, प्रसिद्धि, फूलों की माला, जय जयकार, ये सब क्या है, घोड़ा डिम्ब, ये सब चीजें तुच्छ हैं, ये भक्ति में बाधाएं हैं। अगर हमको अपने परिवार के कारण ये सब चीजों को रखना पड़े तो रखना चाहिए, लेकिन मन में जाना चाहिए सब घोड़ा डिम्ब है। लोग झगड़ रहे हैं घोड़ा डिम्ब के लिए, दुनिया में सब लोग झगड़ रहे हैं इन चीजों के लिए, लेकिन वैष्णव वो है जो तरसता है हरि नाम के लिए। रूप गोस्वामी ऐसे बोलते हैं कि जब मैं 2 अक्षर बोलता हूं कृष्णा, तो मेरी इच्छा होती है मेरे पास लाखों जीव हो, और जब ये नाम मेरे कानों में प्रवेश करता है तो मेरी इच्छा होती है मेरे पास लाखों कान हो, और जब ये नाम मेरे हृदय में जाता है तो मेरे हृदय को जीत लेता है और मैं स्तब्ध हो जाता हूं। तो हमें तरसना चाहिए, यर्न। और थर्ड स्टेप महाराज बताते हैं, प्लीड फॉर द होली नेम, प्लीड, याचना करना। जैसे कोर्ट में कोई व्यक्ति प्लीड करता है कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ऐसे बड़े बड़े आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कैसे बोलते हैं, हमारा जीवन सदा पाप रत, नाही को पुण्यर लेश। भगवान से बोलते हैं मैं बहुत पापी हूं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषय दुर्जन सदा कामरत। गोपीनाथ मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, हमारा उपाय नहीं, मेरे कोई उपाय नहीं है, तुम्हारा चरण लाइनो शरण तुम्हारा किंकर आमी। कई बार हम ये भजन को गाते भी हैं और अच्छी करता है मृदंग के साथ, लेकिन हम उस भावना में नहीं गा रहे, हम एंटरटेनमेंट के लिए गाते हैं, तो वो भी अच्छा है क्योंकि ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक, लेकिन सच्ची भावना है जब आचार्य के भजन को अपने हृदय में रखना। प्रभुपाद जी बोलते थे भक्ति विनोद ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर के भजन जो है ये वेद वाक्य है, ये वेदों के समान है। तो जब हम भजन को गाते हैं इस फीलिंग्स के साथ, गोपीनाथ कब मन ये पागल मोर न माने शासन, मेरा मन पागल है कृष्ण, आप मेरे पर दया करो, असुर सकल लाई लो शरण, मैंने सबको शरण दिया मुझे भी शरण दो, इस भावना से भगवान से प्लीट करना, प्लीट कृष्ण मैं पापी हूं। अभी रूप गोस्वामी की कथा सुनी हमने, रूप गोस्वामी बोले थे मैं पापी हूं, मैं बहुत पतित हूं, और अंत में महाराज कहते हैं क्राई फॉर द होली नेम, लॉन्ग फॉर द होली मून, तरस क्राई यानी रोना, कृष्ण मेरे पर दया करें। और ऐसे करते करते एक दिन आएगा, जरूर एक दिन आएगा जब हम कृष्ण का नाम पुकार सकेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सांकरिक खोर और ये दान विहारी की कहानी है। इसके बाद और एक स्थान है जहां पर हम लोग जाएंगे, जो यहाँ पर हम लोग प्रसाद लेंगे, जिसका नाम है गैबर वन। और ये बड़े बड़े एडवांस भक्तों के मत में पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्थान है। चित्रा सखी का गांव है, इसको चिक्सोली बोलते हैं। ये राधा रानी का गांव है, थोड़ी दूर ऊंचा गांव है जो कि ललिता सखी का गांव है, और नीचे चित्रा सखी का गांव है, इसका नाम है चिक्सोली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण एक कमल के समान है, कमल के बीच वाले भाग में, और जो अष्ट सखी है वो उस कमल के 8 पंखुड़ियां हैं। तो नीचे आप जाओगे, आप एक कुंड देखोगे जिसका नाम है कृष्ण कुंड, और वहां के जो लोकल भक्त हैं उसको राधा सरोवर कहकर संबोधित करते हैं। और गैबर वन ये बहुत सुंदर स्थान है। बहुत समय पहले राधाना स्वामी महाराज बताते हैं 1971 में जब वे बरसाना में आए थे, तब उस समय महाराज भिक्षुक के रूप में भिक्षा मांगते, मधुकरी करते, और एक ब्रजवासी के यहाँ गए और ब्रजवासी बोला मैं आपको रोटी दूंगा। उन्हें कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं था, और तो महाराज के काम उसके आंगन में गए और उन्होंने रोटी दी, उनको 4 रोटी। जैसे ही रोटी दी, ऊपर से एक बंदर ने छलांग लगाया और 4 रोटी ले ली। तो हम लोग प्रसाद वहीं पर लेने वाले हैं अभी। आपको सावधान कर रहा हूं। तो वो स्थान का नाम गैबर वन है, और कृष्ण कुंड भी बोलते हैं उसको, राधा सरोवर। गैबर वन का एक और अर्थ है नृत्य वन, उसको फॉरेस्ट ऑफ डांसिंग, क्योंकि यहां पर गोपियां, राधे रानी और कृष्ण सब वहां पर नृत्य करते हैं। यहां पर के जो ब्रजवासी हैं बहुत दयापूर्वक आज उन्होंने हम सब लोगों के लिए प्रसाद बनाया है, क्योंकि राधाना स्वामी महाराज के मित्र भी हैं बहुत सालों से, हम लोग उनसे मिलेंगे। तो उनके जो बड़े गुरु हैं श्री रमेश बाबा जी महाराज, कुछ समय पहले यहाँ के जो सरकार का प्लान था कि जो भी पेड़ों हैं उसको काटा जाए और दूसरे कार्यों के लिया जाए, लेकिन इन सब भक्तों ने बहुत विरोध किया, और बंबई में कुछ भक्तों की सहायता से कईयों ने इस तरह व्रत भी रखा और प्रार्थना की श्रीमती राधा रानी से, और फिर सरकार ने ये नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति इन वृक्षों को छू नहीं सकता, ये आम बहुत ही मूल्यवान चीज है। ब्रजवासियों ने इस वन की रक्षा के लिए अपने जीवन को भी जोखिम में डाला, कई लोग उनका विरोध भी कर रहे थे कि उनको मारने भी आ रहे थे, लेकिन राधा रानी की प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, और उसका फल ये है कि आज भी हम इन सुंदर वनों को देख सकते हैं जहाँ पर राधा रानी और कृष्ण नित्य रूप से लीला करते हैं। एक और स्थान जहां पर हम लोग प्रसाद के बाद जाएंगे, उसका नाम है मोर कुटी। मोर कुटी की कहानी इस प्रकार है कि एक बार भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि आपका मुख जो है बहुत सुंदर है, चंद्रमा के समान है। तो राधा रानी बहुत क्रोधित हो गई कि आपने मेरे मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की, लेकिन चंद्रमा पे बहुत सारे धब्बे लगे हुए हैं, और चंद्रमा कभी शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में कम हो जाता है, और क्या मेरे मुंह में ऐसे निशान दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इसको बोलते हैं मान लीला। मान लीला मतलब कृष्ण जो है, कृष्ण के व्यवहार से राधा रानी रूठ जाते हैं। और एक बार ऐसे भी हुआ था कि कृष्ण भगवान राधा रानी के पास जा रहे थे संगीत सीखने के लिए, और राधा रानी जो भी राग बोलते कृष्ण जान में उसके उल्टा गाते थे, और बाद में राधा रानी बहुत प्रयास करते हैं, बाद में उनको पता चला कि ये जानबूझ के मजाक कर रहे, तो राधा रानी रूठ गए। ये 2 कारण थे जो महाराज ने अलग अलग वर्षों में ये कहानी बताई थी। तो अंत में श्रीमती राधा रानी बोले कि मैं कृष्ण की ओर देखूंगी नहीं, और कुछ भी नहीं, आकाश नीला वो भी नहीं, कोई भी नीली चीज नहीं, अनकृष्णा, एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्ण, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं। तब अंत में भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे अलग अलग तरीके से। और एक तरीका था कि कृष्ण मोर की तरह नाचने लगे। श्रीमती राधा रानी जब देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। कृष्ण सब मोरों को निर्माण करने वाले हैं, जब कृष्ण मोर की तरह नृत्य करते हैं तो अतुलनीय होता है, कोई मोर भी उस तरह नहीं नृत्य कर सकता। और श्रीमती राधा रानी हंसने लगती हैं, उनका क्रोध दूर हो जाता है और वो मोरनी बन जाते हैं और वो नृत्य करने लगते हैं। ये लीला है जो यहां पर हुई थी। एक अंधे संत थे जिनकी आंखें नहीं थी, देख नहीं सकते थे, लेकिन बहुत एडवांस भक्त थे, बहुत नम्र भी थे, और वो यहां पर इस पर्वत पर निवास करते थे। हालांकि उनको दिन का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन क्योंकि हृदय में शुद्ध थे और राधा और कृष्ण की लीला देख रहे थे। हम दिन का प्रकाश देख रहे हैं, धाम में हैं, लेकिन हमको राधा कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। प्रेमांजन छुरी भक्ति विलोचने न संत सदैव दिश। ये प्रेम का अंजन लगाने से कृष्ण दिखते हैं। जैसे अंजन लगाते हैं चंदन घिसना पड़ता है, से जब हम जप कर रहे हैं हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जो कृष्ण नाम है यही अंजन है। कौरी के श्री कृष्ण नाम उच्चारण नाम से। चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक बार पूछा था कि भक्ति के सब आइटम्स में, सब तरीकों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, और महाप्रभु बोले नाम कीर्तन। इहा हैते पाई कृष्ण र प्रेम, से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। तो ये भजन कर रहे थे, राधा कृष्ण का नाम लेते, और उनको एक बार ये लीला दिखाई पड़ी, राधा रानी मोरनी है और कृष्ण मोर बने हुए नृत्य कर रहे हैं। तो राधा रानी एक दिन उनके सामने प्रकट हुई और बोले कि मैं तुमको ये लीला दिखा रही हूं, लेकिन एक शर्त है कि आपको एक पेंटिंग बनाना होगा, उसका एक पेंटिंग बनाना होगा, तो एक चित्र बनाना होगा उस लीला का। तो कहने लगे मैं कैसे चित्र बनाऊं, मेरे को देखना ही नहीं आता, ना मेरे पास कलर है, ना कोई कैनवस है, उस समय में कोई बाजार भी नहीं थे पास में कुछ मांग सके। ये बरसाना पूरा निर्जन शहर, निर्जन जंगल था, और अभी भी काफी कुछ वैसा ही है। ब्रज के सबसे सुंदर स्थानों में से एक श्री बरसाना धाम है। तो श्रीमती राधा रानी बोले योग क्षेम वहाम्यहम्, आई कैरी व्हाट यू लैक एंड प्रिजर्व व्हाट यू हैव। भक्त के लिए जो चीज आवश्यक है भगवान देते हैं, और जो चीज है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। तो राधा रानी को सब, राधा रानी ने सब कुछ दे दिया, और उनको एक ब्रश भी मिल गया, और कुछ कुछ मिट्टी कुछ हर्ब्स को उन्होंने पेंट बना दिया, और एक प्रकार का वृक्ष था, और वृक्ष की जो छाल होती है उसको कैनवस के रूप में बना दिया, और उन्होंने पेंटिंग बना दी। महाराज कमेंट करते हैं कि अगर कृष्ण की कृपा हो तो कोई चीज असंभव नहीं है। बाइबल में कहा गया अगर एक पर्वत है और आपके अंदर श्रद्धा है और आप बोलो पर्वत ये हिल के उधर चले जाओ, तो पर्वत भी हिल जाएगा। फेथ, भक्ति कितनी आगे बढ़ी है कैसे जान सकते हैं, कितनी श्रद्धा है। प्रभुपाद 1973 में भक्तों को बोल रहे थे, अगर मेरे पास जो थोड़े से भक्त हैं, अगर सबको विश्वास हो कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो हम 18 दिन में पूरे विश्व को कृष्ण भक्त बना सकते हैं, 18 दिन में। अच्छा, प्रभुपाद सबसे पूछ रहे थे आंखों में देखकर, क्या आपको ये श्रद्धा है, क्या आपको श्रद्धा है। जब प्रभुपाद जी देखते तो आंखों के द्वारा अंदर हृदय में देख रहे थे, तो हम प्रभुपाद जी को कोई सबसे झुकाने लगे कोई, तो श्रद्धा ही रियल सत्व है, श्रद्धा भक्ति का सार है। और ये भक्त को श्रद्धा थी, इसलिए राधा रानी ने उनको कृपा की। प्रभुपाद जी को श्रद्धा थी, 40 रुपए लेकर अमेरिका गए, अभी 70 साल की उम्र में। आजकल आप 40 रुपए लेकर जाओ तो कुछ नहीं, $1 भी नहीं होगा, आपको एक समय का भोजन भी नहीं मिलेगा। श्री प्रभुपाद के पास असली धन 40 रुपए नहीं थे, असली धन था गुरु में श्रद्धा, कृष्ण में श्रद्धा और कृष्ण नाम, ये सबसे बड़ी संपत्ति थी। प्रभुपाद एक बार हिंदी में बंबई में लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद जी के कई लेक्चर हिंदी में भी हैं, आप में से जो भक्तों को अगर चाहिए हो तो मैं आपको दे सकता हूँ सुनने के लिए। प्रभुपाद की बहुत सुंदर हिंदी है, प्रभुपाद जी बंगाली हिंदी में बोलते हैं, हम एकला आदमी गया अमेरिका में 40 रुपया लेके, और अभी 40 करोड़ रुपया हो गया, कितना बड़ा बिजनेस है देख। अब भी आओ। ये प्रभुपाद जी की फेथ थी कि 10 साल में 40 रुपए का 40 करोड़ हो गया। मेरे ख्याल से कोई भी बिजनेस फाइनेंस कंपनी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी के अंदर श्रद्धा थी भगवान के नाम से, और hundreds of temples, farm community, school, हजारों बच्चे और गुरुकुल के बच्चे और हजारों भक्त और करोड़ों पुस्तक वितरण. श्याम सुंदर प्रभु भी, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं श्याम सुंदर प्रभु, वो भी एक यात्रा में महाराज के साथ थे इस बरसाना में. आप जैसे किसी को याद होगा, 2 साल पहले या 3 साल पहले श्याम सुंदर प्रभु के बारे में बता रहे थे कि श्याम सुंदर प्रभु के अंदर एक श्रद्धा थी. उनको प्रभुपाद जी ने भेजा, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी और 2 गृहस्थों को, कि जाओ पूरे लंदन में प्रचार करो. उसमें प्रचार ऐसे होता, प्रभुपाद किसी भक्त को बोलते जाओ नया सेंटर खोलो, कोई कुछ नहीं, मृदंग करताल भी नहीं, कुछ ज्यादा से ज्यादा मृदंग करताल. श्याम सुंदर प्रभु को श्रद्धा थी और वो उस जमाने के जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बीटल्स, जो जॉन लेनन और जॉर्ज हैरिसन, ये सब जो बड़े प्रसिद्ध लोग थे, उनके पास गए और बहुत आसानी के साथ उन्होंने भक्ति वेदांत मैनर को डोनेट किया श्री प्रभुपाद के लिए, क्योंकि भक्तों के अंदर श्रद्धा थी. अगर किसी के पास श्रद्धा है तो उसका जीवन सफल है, और अगर श्रद्धा नहीं है तो उसका जीवन विफल है. तो श्रीमती राधा रानी की कृपा से ये अंधे संत भी बहुत सुंदर पेंटिंग बना सके, और ये पेंटिंग हम सब देखने के लिए जाएंगे. अभी नहीं, क्योंकि अभी प्रसाद का समय हो रहा है, हम लोग प्रसाद के बाद वहां पर देखने के लिए जाएंगे. और एक कहानी है, यहाँ पर एक शेर रहता था, अभी नहीं है, डरने की बात नहीं है. ये 1971 की बात है, जब राधानाथ स्वामी महाराज यहाँ रहते थे, तो उनके उस समय के भी नहीं, उस समय जो ब्रजवासी थे उनके पिता, उनके पिता के पिता और उनके पिता के पिता के पिता बताते थे कि एक शेर रहता था. लेकिन वो पेड़, सॉरी वो शेर हमेशा हरे कृष्णा मंत्र बोलता था. आवाज रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन आप जोर से शेर की आवाज में बोलिए, हरे कृष्ण कृष्णम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णम, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. लेकिन ये शेर जब कब करने लगा, इसके पहले की और एक कहानी है. पहले वो भक्त नहीं था, एक संत रहते थे, वो संत जब करते थे तो शेर उनका जब सुनने के लिए आता था. अगर आप जब नहीं करते खाली सुनते हो तो भी लाभ मिलता है, इसलिए भक्तों के संग में करना अच्छा है, क्योंकि दूसरों का भी सुन सकते हैं. तो वो शेर सुनने आने लगा, धीरे धीरे वो नम्र बन गया और एक दिन वो समर्पित हो गया, और उस दिन उसको दीक्षा मिल गई, डायरेक्ट दीक्षा मिल गई उसको, कोई प्रोग्राम नहीं, डायरेक्ट. और को नाम दीक्षा दी. तो दीक्षा का शिष्य का कर्तव्य, अरे ब्रह्मचारी था शेर. तो ब्रह्मचारी का कर्तव्य है ये दीक्षा होने के बाद भिक्षा मांगना, और जो भी कोई व्यक्ति कुछ दे वो गुरुजी को जाके देना. तो ब्रह्मचारी जाते, एक गले में एक उसने एक बैग डाला था. अब शेर को देख के सब लोग, कोई सामने नहीं आएगा, तो उसने एक बोर्ड लगाया हुआ था, वो बोर्ड में लिखा हुआ था संस्कृत में मधुकरी. मधुकरी मतलब जैसे जैसे एक भंवरा होता है, अलग अलग फूल से जाता है भिक्षा मांगता है, ऐसे वो भी भिक्षा मांगता है.